पहला सैमुअल अध्याय 16 पद 1 और पद 2 में, और यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शौल को इसराइल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंह में तेल भरकर चल, मैं तुझको बेतलहेमी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूं? यदि शौल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। अब ये आपको दिखाता है कि शौल परमेश्वर से और उसकी बातों से कितना दूर हो चुका है। वो परमेश्वर के भविष्य वक्ता को मार देगा। शमूएल ये समझ चुका था कि यह मनुष्य सच में बहुत दूर जा चुका है। परमेश्वर अगर उसने सुन लिया कि मैं दूसरे राजा को अभिषेक करने जा रहा हूं तो वो मुझे मार देगा। अध्याय 16 पद 2 से लेकर पद 13 तक। यहोवा ने कहा, एक बच्चिया साथ ले जाकर कहना कि मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना, तब मैं तुझे जता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बेतलहेम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ मित्र भाव से आया हूं, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं, तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलियाब, वो दिखने में एक सुंदर व्यक्ति था, पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि मैं वैसे नहीं देखता जैसे मनुष्य देखते हैं। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, परमेश्वर ने कहा, मैं हृदय को देखता हूं, अतः केवल बाहरी व्यक्तित्व को मत देख, मैं हृदय को देख रहा हूं, एलियाब वो नहीं है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शमा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। यूं ही यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला, नहीं, लहूरा तो रह गया और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो यहां न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। इस तरह इसराइल पर राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया गया। शौल अभी भी राजगद्दी पर था। जबकि राजा होने के लिए दाऊद परमेश्वर की पसंद का व्यक्ति था और उसका अभिषेक भी किया जा चुका था। अगले कुछ अध्यायों में हम ध्यान देने जा रहे हैं कि अब शौल बलपूर्वक अपने अच्छे काम करेगा, राजगद्दी पर बने रहने के लिए जो अब उसकी नहीं है। कानूनी ढंग से दाऊद राजा है, वो अभिषिक्त राजा है। परमेश्वर का अभिषेक और उसकी आत्मा का सामर्थ और अभिषेक दाऊद पर राजा के रूप में है, फिर भी शौल अभी भी सिंहासन पर है। शौल अब दाऊद को बलपूर्वक राज्य से बाहर निकालने की कोशिश करता है, उस राज्य से जो कानूनन दाऊद का है। इसका ये निष्कर्ष है, यीशु ने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा इस संसार को छुड़ाकर परमेश्वर को वापस लौटा दिया और अब वास्तव में वही राजा है। वो तो परमेश्वर का प्यारा और अभिषिक्त है, फिर भी शैतान अभी तक सिंहासन पर है और उस पर जबरदस्ती अपना कब्जा रखने के लिए वो अपना अच्छे से अच्छा काम करता है। वो मेहनत करता है कि धरती से परमेश्वर के राज्य को दूर रखे। यीशु मसीह न्यायपूर्ण राजा है और हम उनकी विजय पर दावा कर सकते हैं और हम दुश्मन को बलपूर्वक उसके क्षेत्र से भगा सकते हैं, लेकिन दुश्मन जिद्दी है। वो केवल तब झुकता है जब वो चाहेगा, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं विशिष्ट होनी चाहिए। ये कहने के बजाय परमेश्वर दुनिया को बचा, आपको एक एक को निजी रूप में परमेश्वर के सामने लाना है और प्रार्थना करना है, प्रभु तो इसलिए मरा कि इनके जीवनों पर राज्य करे। ये शैतान और अंधकार के दासत्व में है, परंतु यीशु ने बैरी की शक्तियों को तोड़ दिया है। आप इसलिए मरे कि आप राजा की तरह उनके जीवनों में राज्य करें और वे शैतान की ताकत और अंधकार की शक्ति के द्वारा जकड़े हुए हैं, लेकिन यीशु दुश्मन की शक्तियों को हरा चुका है। कुलुसियों की किताब के दूसरे अध्याय में लिखा है, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए मैं यीशु मसीह की विजय का इस जीवन में दावा करता हूं और मैं शैतान की शक्ति के विरुद्ध आता हूं जिसने उन्हें बांध कर रखा है। मैं अंधकार की शक्ति के विरुद्ध जिसने उनकी आंखों को सच्चाई के प्रति अंधा कर रखा है आता हूं। यीशु के नाम में इस अंधेपन या अज्ञानता से उनको छोड़, बुरे विचारों से उनको छोड़ जिसे शैतान ने इनकी बुद्धियों में परमेश्वर के विरुद्ध जहर भर रखा है। मैं उन्हें शैतान की शक्ति से मुक्त करा सकता हूं ताकि वे चयन करने की स्वतंत्रता पाए। मनुष्य मसीह को क्यों नहीं चुनता? क्योंकि शैतान उनके दिमाग पर नियंत्रण रखता है और उनको अपने बंधन में बांध कर रखता है, जिसके कारण उनके पास चयन की स्वतंत्र इच्छा नहीं होती है। वे असल में शैतान के द्वारा बंदी या गुलाम बनाए जा चुके हैं। उनकी मर्जी या इच्छा के विरुद्ध भी उसने उन्हें बंदी बना रखा है। इस दुनिया के ईश्वर ने उनकी आंखों को ऐसा अंधा बना दिया है कि वे सत्य को नहीं देख सकते। इसलिए मेरी प्रार्थना सीधी दुश्मन के विरुद्ध होनी चाहिए। मैं मसीह की विजय को उनके जीवन में तब तक मांगूंगा जब तक कि मैं उन्हें शैतान के अंधेपन के प्रभाव से मुक्त न देख लूं, ताकि वे स्वतंत्र चयन कर सके। कोई भी मनुष्य जब इसे एक स्वतंत्र मन से देख सकेगा जो बिना उस जहर और गंदे विचारों का है जिन्हें शैतान ने उसके दिमाग में भर रखा है, तो वो निश्चय ही यीशु मसीह को चुनेगा। केवल बेवकूफी उन्हें ना पसंद करेगा या छोड़ेगा। इसलिए ये मेरे लिए है कि मैं उनको शैतान की शक्ति और बंधुआई के बंधन के प्रभाव से मुक्त करूं, ताकि वे अपने सच्चे राजा का चुनाव कर सके। मैं लोगों को अंधकार की शक्ति से प्रार्थना के द्वारा छुड़ा सकता हूं। ये बड़ा आत्मिक हथियार है जिसे परमेश्वर ने हमें उपलब्ध कराया है। परंतु शैतान जिद्दी है, वो तब ही भागता है जब उसे जाना होगा। इसलिए आपकी प्रार्थनाएं विषय से संबंधित होनी है। जैसे ही आप उसे उसके क्षेत्र से बाहर निकालेंगे, वो आप पर पलटकर हमला करेगा। वो उसे वापस लेने की कोशिश करेगा। इसलिए प्रार्थनाएं दृढ़ता पूर्वक लगातार होनी चाहिए। विजय के प्रथम चिन्ह को देखने के बाद भी बहुत बार हम एक गलती करते हैं। हम कहते हैं, ओह देखो वे आगे चले गए, ओह परमेश्वर की महिमा हो, अब हम इस पर काम करने वाले कौन हैं? हम और प्रार्थना नहीं कर रहे हैं और उस स्थिति को शैतान के विरुद्ध नहीं पकड़ रहे हैं, लेकिन शैतान पलटकर उस क्षेत्र को जिसमें से उसे भगाया गया है वापस लेने की कोशिश करता है। इसलिए हमें प्रार्थना में उस व्यक्ति को थामे रहना चाहिए। हम एक सच्चे युद्ध में हैं। एफिसियों 6:12, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, ये अंधकार की शक्तियां। लेकिन यद्यपि अंधकार की शक्तियों और ज्योति की शक्तियों के बीच कितना भी भयंकर युद्ध चल रहा है, वहां क्रूस पर एक निर्णायक विजय पहले ही से निश्चित की जा चुकी है। और ये हमारा काम है कि क्रूस की विजय को अपने जीवनों में और अपनी परिस्थितियों में प्रार्थना के द्वारा लाए। लेकिन शैतान छोड़ना नहीं चाहता, जैसे शौल। लेकिन जब आप यीशु के नाम के अधिकार के साथ उसके विरुद्ध आते हैं, तो उसे भागना पड़ता है, क्योंकि वो हराया जा चुका था। क्योंकि वो ढीठ और जिद्दी है, वो वहां आएगा जहां उसका कोई काम नहीं है। वो उस पर अधिकार करेगा जिससे उसका कोई सरोकार नहीं है। इसलिए आपको प्रार्थना में बहुत दृढ़ता के साथ उसे लड़ना होगा। उसे कोई स्थान नहीं देना, लेकिन दावा करना है, मसीह की विजय का दावा करना। आप अपने जीवन में सच्ची विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने आसपास के लोगों के जीवनों में अपनी प्रार्थना के द्वारा विजय ले सकते हैं। इसलिए इसराइल पर राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया गया था। अब इस विशेष जगह हमारे पास एक रोचक वचन है जो समझने में कठिन है। अध्याय 16:14 में यहोवा का आत्मा शौल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। इसका क्या अर्थ है, यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा? मैं अनुमान करता हूं इसका मतलब है परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा, लेकिन अपने दिमाग में इसे स्पष्ट करना हमारे लिए कठिन है। अब मैं नहीं चाहता कि आप उठे और गुस्से में चले जाएं, क्योंकि मैं जो कहूंगा वो सुनने में बहुत अमूल सा लगता है, लेकिन मैं सहमत हूं कि शैतान एक विचित्र या अद्भुत ढंग से परमेश्वर के उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है। अगर यहां शैतान नहीं होता तो हमारे पास चुनाव करके निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं होती। अगर हमारे पास चुनाव की यह क्षमता नहीं होती तो परमेश्वर कभी जान नहीं पाता कि आप उसे प्यार करते हैं या नहीं। शैतान का अस्तित्व नहीं हो सकता था यदि परमेश्वर उसके अस्तित्व को अनुमति न दे। और क्योंकि परमेश्वर ने उसके अस्तित्व को अनुमति दी, इसका मतलब है कि वो परमेश्वर के किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहा है, अन्यथा शैतान का आसपास होने का कोई भी कारण नहीं है। अगर वो परमेश्वर के उद्देश्य के लिए काम न कर रहा होता तो आज परमेश्वर सच में उसको इतनी छूट न देता। लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने का काम कर रहा है कि आप परखे जाएं, ताकि परमेश्वर के लिए आपका प्यार वास्तविकता में स्वे इच्छा से हो, परमेश्वर ने शैतान को स्वतंत्र अनुमति दी है कि वो परमेश्वर के उद्देश्य के लिए काम करे। अतः सारी सृष्टि अभी तक परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने का काम कर रही है। शैतान भी अपने विद्रोह में, क्योंकि उसमें परमेश्वर का एक उद्देश्य है। हमें चयन की इच्छा देकर अगर पसंद या चयन करने को कुछ न हो तो चयन करने की स्वतंत्रता का क्या मूल्य होगा। जो किताब तुम्हें पसंद हो मेरे हाथ से ले लो। मेरी कोई पसंद नहीं है। चुनाव करने के लिए दो भिन्न बातें भी होना चाहिए। अतः परमेश्वर ने शैतान के विद्रोह को अनुमति दी, शैतान को चलते रहने की अनुमति दी, शैतान को स्वतंत्रता दी कि वो आकर आपको ललचाए और परेशान करे, वो आपके मन में काम करने की और आपके लिए परमेश्वर की सेवा करना कठिन बनाए, उसे ये अनुमति दी गई है। इसलिए जब आप परमेश्वर की सेवा करें या काम करें तो सारी बाधाओं के बावजूद, कठिनाइयों के बावजूद आपकी अपनी इच्छा हो, परमेश्वर मैं भी आपको प्यार करता हूं, मेरा परमेश्वर के लिए प्यार मेरे चयन के द्वारा साबित होता है, चाहे मेरे रास्ते में कितनी कठिनाइयां और बाधाएं क्यों न आ जाए, तभी परमेश्वर निश्चित होता है कि मेरा प्यार उसके लिए पवित्र और सच्चा है। अगर मैं अपने बेटे से कहूं मैं शहर जाकर आता हूं तुम मुझे घर में ही मिलना, जाने से पहले मैं उसे एक बड़े पेड़ के साथ जंजीर से बांध देता हूं, घर लौटने के बाद मैं उसे खोल देता हूं और कहता हूं ओह मुझे अपने बेटे पर घमंड है, वो अपने पिता का आज्ञाकारी है, वो पिछवाड़े में ही रुका रहा, गुड बॉय। मेरे पड़ोसी कहेंगे तुम्हें उसका कोसना और मुक्त होने के प्रयास में चिल्लाना सुनना चाहिए था, उसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं थी। आज्ञाकारिता को अर्थपूर्ण बनाने के लिए अवज्ञा या आज्ञा न मानने के लिए कोई संभावना, कोई मौका, कोई खुला दरवाजा तो होना चाहिए। परमेश्वर आपसे अर्थपूर्ण प्यार चाहता है, इसलिए पसंद की छूट दी जाना आवश्यक है। इसलिए परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा या परमेश्वर की अनुमति से जो भी आपको अच्छा लगता है एक दुष्ट आत्मा को आना है। अब मैं सहमत हूं कि जब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन से दूर चला जाता है तब दुष्ट आत्मा के आने के लिए दरवाजा खुल जाता है। अतः एक दुष्ट आत्मा को परमेश्वर के द्वारा अनुमति मिली थी कम से कम शौल को परेशान करने के लिए। परमेश्वर का आत्मा उसे दूर चला गया। एक इंसान के जीवन का सबसे दुखी समय वो है जब परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन से दूर चला जाए और एक दुष्ट आत्मा उस पर मंडराने लगा और उसे परेशान करने लगा। अध्याय 16 पद 15 से लेकर पद 21 तक में। और शौल के कर्मचारियों ने उसे कहा, सुन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वो अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। शौल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा एक उत्तम बजवैया देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर दे के कहा, सुन मैंने बेतलहेम यिशै के एक पुत्र को देखा है जो वीणा बजाना जानता है और वो वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तब शौल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहला भेजा कि अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब यिशै ने रोटी से लदा हुआ गदा और कुप्पा भर दाक मधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शौल के पास भेज दिया और दाऊद शौल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और शौल उसे बहुत प्रीति करने लगा और वो उसका हथियार ढोने वाला हो गया। असल में दाऊद के हृदय में शौल के लिए बहुत श्रद्धा थी, स्वाभाविक है, वो एक जवान लड़का था और शौल लंबा तगड़ा सुंदर व्यक्ति था जो दाऊद की आंखों में एक हीरो की तरह था। दाऊद हमेशा शौल की इज्जत उसके मरने तक और मरने के बाद भी करता रहा। दाऊद ने कभी भी इस मनुष्य के लिए अपनी आंखों में इज्जत नहीं खोई। अध्याय 16 पद 22 और पद 23 में, तब शौल ने यिशै के पास कहला भेजा कि दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे क्योंकि मैं उसे बहुत प्रसन्न हूं और जब जब परमेश्वर की ओर से वो आत्मा शौल पर चढ़ता था तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शौल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वो दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। अब ये सब कितने समय चला हमें बताया नहीं गया, परंतु ये सुंदर रिश्ता जल्दी ही टूट गया जिसे हम अध्याय 17 में देखेंगे। अगले अध्ययन तक परमेश्वर आपके साथ हो जैसे वो दाऊद के साथ था। आपका हृदय और जीवन परमेश्वर की आत्मा की बातों के लिए खुला रहे और आपकी प्रभु के साथ सहभागिता आशीषों से भरी हो। आपने इस अध्ययन के लिए समय का जो बलिदान किया है उसके लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर का सामर्थ और आनंद अब आपका भाग हो जबकि आप उसकी मन भावन संगति में चलते हैं।